प्रमला जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अरुणिमा का नेचर सच में बहुत सीधा था। इतनी बड़ी रियासत की रानी होकर भी उसका रहन सहन बहुत ही आम सा था। प्रमला जी ने मुस्कुराते हुए अरुणिमा से कहा, आपका नेचर तो बहुत अच्छा है रानी साहिबा, आपको देखकर लगता ही नहीं है कि आपके इतने बड़े बड़े बच्चे हैं। अब मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अमृता को हमारे घर की बहू के रूप में चुना है। वैसे मुझे लगा था कि शायद आप राजा साहब से अलग हो चुकी हैं। डाइवोर्स नहीं हुआ है हमारा, मेरी वाइफ बस मेरे साथ नहीं रहती है। ये मेरे साथ नहीं रहती है इसका मतलब ये नहीं है कि उसका और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। वो आज भी मेरी वाइफ है, इसीलिए शादी की हर रस्म में उसका होना उतना ही ज़रूरी है जितना मेरा होना ज़रूरी है, आस्तिक ने अपनी दमदार आवाज़ में कहा। तो उसके सामने किसी की कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। प्रमला जी ने अपना चेहरा नीचे करते हुए, सॉरी राजा साहब, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। अरुणिमा ने आस्तिक को देखा और फिर उसने ना में सर हिलाया। आस्तिक अपनी आंखें बंद करता है और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। अरुणिमा की बेइज्जती वो किसी के मुंह से भी बर्दाश्त नहीं करेगा, भले ही सामने वाला उसकी बेटी का होने वाला ससुराल ही क्यों ना हो। अरुणिमा जल्दी से बात को संभालते हुए कहती है, अरे हम लोग यहाँ बैठे हैं मनोहर की रस्म करने के लिए, तो जल्दी जल्दी पहले रस्म करते हैं ना। एक तरफ से प्रमिला जी खड़ी होती हैं और दूसरी तरफ से जानवी भी खड़ी होती है। लड़के की माँ लड़की की माँ को मनोहर की थाली देती है और फिर लड़की की माँ लड़के की माँ को मनोहर की थाली देती है। उसके बाद अरुणिमा एक एक करके बाकी के रिश्तेदारों में आई महिलाओं को मनोहर की थाली देती है, जिसमें साड़ी, चूड़ी, बिंदी, सुहाग का सामान और सिक्कों की थैलियाँ थी। सारे मेहमानों को मनोहर की थाली देकर अरुणिमा महल की तरफ अंदर जाने ही वाली थी कि तभी उसे कुछ एहसास होता है और उसके कदम रुक जाते हैं। अरुणिमा के हाथ में फूलों की थाली थी जो वो महल के अंदर ले जा रही थी, लेकिन जैसे ही उसे अपने दिल की धड़कनें बढ़ती हुई सी महसूस होती हैं, उसके हाथ कांपने लगे थे। बहुत दिनों से सोच रही थी कभी खुशी कभी गम का ये आइकॉनिक सीन लिखने के बारे में। फाइनली इस सीन में मुझे मौका मिल ही गया है। शाहरुख खान की एंट्री के साथ इस सीन को जितना ग्रैंड बनाया था तब से ही सोच रखा था, एक ऐसी एंट्री तो ज़रूर रखूंगी। अरुणिमा दरवाजे के पास खड़ी थी। आस्तिक अरुणिमा के पास आता है और कहता है, क्या हुआ अरुणिमा, तुम यहाँ रुक क्यों गई हो? अरुणिमा के चेहरे पर घबराहट आ गई थी और उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। उसने धीरे से आस्तिक को देखते हुए कहा, ऐसा लग रहा है जैसे आकाश ने मुझे पुकारा है। आस्तिक का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया था क्योंकि उसे पता था आकाश इंडिया तो आ चुका है लेकिन वो फार्म हाउस में नहीं गया है, इसीलिए वो अरुणिमा से कुछ नहीं कहना चाहता था। उसने अरुणिमा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम फिक्र क्यों कर रही हो, आकाश जल्दी इंडिया आ जाएगा। मैंने तुमसे वादा किया है ना कि मैं आकाश को इंडिया लाकर रहूंगा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे थोड़ा सा टाइम दो। अरुणिमा अपने जज्बातों को अंदर जब्त कर लेती है और हाँ में सर हिलाती है। वो वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी उसे अपने कानों में घोड़े के दौड़ने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ आस्तिक को भी सुनाई देती है। अरुणिमा और आस्तिक एक साथ दरवाजे की तरफ देखते हैं, वो बड़ा सा लोहे का दरवाज़ा जिसकी दूसरी तरफ से उन्हें तेज घोड़े के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। दरवाजे के पास खड़े दो वॉचमैन ने दरवाजे को पकड़ा और एक साथ खोल दिया। तभी काले घोड़े पर सवार आकाश महल में दाखिल होता है। आकाश घोड़े पर हॉर्स राइडिंग करता हुआ महल के अंदर दाखिल होता है। उसके हवा में लहराते हुए बाल और उसकी किलर पर्सनालिटी उसे और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। आस्तिक हैरान हो जाता है, आकाश घर तक आ गया और उसे पता भी नहीं चला। लेकिन अरुणिमा की आंखों से आंसू बहने लगे थे, वो अपने बेटे को इतने सालों बाद फिर से देख रही थी। हालांकि उसने आकाश की तस्वीर देखी थी लेकिन आज उसे अपनी आंखों के सामने देखकर अरुणिमा का मन भारी हो गया था। अरुणिमा के हाथों में जो फूलों की थाल थी वो उसके हाथों से छूटकर नीचे जमीन पर गिर गई। आकाश महल के दरवाजे के सामने बिल्कुल आस्तिक और अरुणिमा के पास आकर अपने घोड़े को रोकता है। आकाश की नजरें अरुणिमा के ऊपर जमी हुई थी। जब से वो महल के अंदर दाखिल हुआ था उसने एक मिनट के लिए भी अरुणिमा के ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटाई थी। आकाश घोड़े को रोकने के साथ ही घोड़े से नीचे उतर जाता है और चलता हुआ अरुणिमा के पास आ जाता है। अरुणिमा के हाथ कांप रहे थे, उसने कांपते हुए हाथों को बढ़ाया और आकाश के गाल को छूने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो आकाश के गाल को छू पाती आकाश ने अरुणिमा का हाथ थाम लिया। अरुणिमा एक चीख के साथ रो पड़ी। वो आकाश के कंधे तक भी नहीं आ रही थी लेकिन उसने आकाश को अपने सीने से लगाने के लिए उसका कंधा पकड़ लिया था। आस्तिक ने भी अरुणिमा को अपने गले से लगा लिया था। अरुणिमा आकाश के गले लगे हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए रो रही थी। अमृता के ससुराल वालों ने भी ये देखा था और जानवी ने उन्हें बताया था कि ये उनका बड़ा बेटा है जो अमेरिका से वापस आया है। कितने सालों बाद माँ बेटे को एक साथ मिलता देखकर वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखों में पानी आ गया था। आकाश अपना दिल पत्थर करके आया था
कि यहाँ पर आने के साथ वो किसी के साथ जज्बातों में नहीं बहेगा, लेकिन अरुणिमा पर नजर पड़ते ही न जाने उसके इन इरादों ने कहाँ खुदकुशी कर ली थी। वो खुद को नहीं रोक पाया था उसके पास आने से। तभी महल में एक गाड़ी एंटर होती है, टूटी फूटी हालत में खटारा सी गाड़ी। ऐसा लगता था जैसे वो गाड़ी किसी जमाने में गाड़ी रही होगी। अब तो उसके आगे बैलगाड़ी भी बहुत अच्छी दिख रही थी। उस गाड़ी में बैठे अनंत को देखकर जानवी जल्दी से उसके पास आती है और कहती है, अनंत तुम ऐसे कैसे आ रहे हो? अनंत ने बहुत मुश्किल से गाड़ी के दरवाजे को खोला तो दरवाजा उसके हाथ में ही आ गया। अनंत दरवाजे को अपने हाथ में पकड़े हुए ही गाड़ी से बाहर निकलता है और जानवी के सामने आकर कहता है, चाची मैं तो चुपचाप घर ही आ रहा, पता नहीं भाई को कहाँ से बीच सड़क पर दौरे पड़े। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें रेस लगानी है, हालांकि मुझे उनसे रेस लगानी भी नहीं थी। पता नहीं कैसे मैं उनके साथ जबरदस्ती रेस में इन्वॉल्व हो गया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि ये गाड़ी और मेरी सवारी दोनों टूट गई है। चाची मेरी कमर में बहुत तेज लगी है, आइस लगा दो।